बाद में फिर हम देखें मुख्य मुख्य कौन से बातें आई, वो सब हम और कभी चर्चा करेंगे। इसमें से आज के पूरा दिन का जो भी चर्चा हुआ, मुख्य मुख्य बिंदु कौन से याद रहे वो सब देखेंगे। तब ये चर्चा कर रहे थे ना कि कैसे केवल सत्य बोलना है उतना काफी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सत्य को कैसे बोलना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगापुर एक देश है ना, सिंगापुर का नाम सुना है? सिंगापुर तो ये साम्यवादी देशों को अलावा के अलावा एक ही देश है जिसने प्रभुपाद को अंदर आने के लिए नहीं दिया। क्या हुआ कि उनके थोड़े शिष्य पहले सिंगापुर में गए थे प्रचार के लिए कि प्रभुपाद के आने की तैयारी करें, और वहाँ पे दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग हैं जो पीढ़ियों पीढ़ियों से पहले जा चुके हैं वहाँ पर, जैसे मॉरिशियस में है, फिजी में है, वेस्ट इंडीज़ में है ना, वैसे यहाँ पर भी बहुत से लोग पीढ़ियों से बसे हुए दक्षिण भारत के वगैरह। तो वहाँ पे जितने भी भारतीय हैं ज़्यादातर वो सब अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, मुरुगन, कार्तिकेय और ये सब अलग 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 अलग। तो हाँ है ना, इधर तमिलनाडु मुरुगन, तमिलनाडु में मुरुगन ज़्यादा करते हैं ना, कार्तिकेय। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के, तो जो प्रभुपाद के शिष्य वहाँ पहले गए वो सब बहुत जोर से प्रचार, जोरदार प्रचार करने लगे, और वहाँ पे मंदिरों में भी प्रचार हो रहा था, तो उनका अवसर मिला वहाँ प्रचार करने के लिए। तो इतने जोर से उन्होंने देवी पूजा, देवताओं की पूजा की निंदा की कि कृष्ण ही परम है और देवताओं की पूजा आदि करने ये नहीं है वो। तो आखिर क्या हुआ कि सारे जो हिंदू समाज है वो लोग ने ही जाके सिंगापुर के सरकार को कंप्लेंट किया, शिकायत की कि हरे कृष्ण वाले ऐसे इनको अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद को फिर अंदर नहीं छोड़ा उन्होंने अंत तक, और आज तक हम इस्कॉन बोल के अंदर नहीं जा सकते सिंगापुर में। हमको जाना है ना तो कपड़ा बदल के जाना पड़ता है। आज तक कितना साल हो गया, 40 साल के बाद अभी तक उसका असर है, क्योंकि उनको सत्य बोलना था लेकिन कैसे बोलना, किस तरह से इनको धीरे धीरे लाना, ये इतनी परिपक्वता नहीं थी। उन्होंने बस सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नहीं है ये सब जैसे है वैसे ही सत्य बोलेंगे करके बोल दिया, और फिर देखो इसका असर क्या हो गया। इतना एक छोटा देश है बहुत, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। मैं पहले हर साल जाता था उधर भी, लेकिन कपड़े बदल के जाना पड़ता है, टोपी ओपी डाल के जाना पड़ता है। तो एरोप्लेन में फिर वो शौचालय में जाके अंदर फिर बदलना पड़ता है, ऐसे सब दशा है। एक बार एक हमारे महाराज थे तो वो कपड़े बदल के गए थे अंदर, लेकिन उनके लोग रहते हैं ना उधर सरकार के लोग, तो उनको पता चला कि ये कोई हरे कृष्ण वाले दिख रहे हैं। तो जब शौचालय में गए थे हाथ मुंह धोने के लिए तो उनके पास जाके ऐसे बोले हरे कृष्णा। तो महाराज के वाला कोई डिवोटी है, हरे कृष्णा। तो उनको बुलाया और वापस भेज दिया, अंदर जाने नहीं दिया सिंगापुर में। जैसे जैसे प्लेन से आए थे ना फिर एयरपोर्ट पे ही रखा उनको, और अगले फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि थोड़े भक्त इतने कड़क बोलते थे, उनको समझ में नहीं आया कैसे बात करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, सत्य को कैसे बोलना चाहिए, पता नहीं था। तो अभी भी आज सिंगापुर में गीता रीडिंग सोसाइटी के नाम से सब चलता है, अलग अलग नामों से संस्था चलती है। तो एक बार एक राजा था, उसने एक ज्योतिष को बुलाया कि देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो ज्योतिष ने पत्रिका वगैरह देखा और कहा कि आपके रिश्तेदारों की मृत्यु जल्दी होने वाली है, परिवार के आपके सदस्य उनकी मृत्यु जल्दी होगी और आपको ही उनका सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं। तो राजा तो आसक्त था अपने परिवार से, तो बहुत गुस्सा आया इसको, एक ऐसे ज्योतिष ऐसे बोलता है, उसको जेल में भेज दिया। फिर कोई दूसरे ज्योतिष को बुलाया। अब ये दूसरा ज्योतिष थोड़ा बुद्धिमान था और उसने जान लिया था कि पहले ज्योतिष के साथ क्या हुआ। तो जब पत्रिका देखी, उसने समझा कि पहले ज्योतिष ने जो कहा था वो सही था, लेकिन इसने कैसे कहा। उसने बोला, महाराज आपकी जीवन की आयु बहुत लंबी होगी, आपके रिश्तेदारों से भी ज़्यादा लंबी आपकी आयु होगी। बात वही थी लेकिन कहा कैसे, अलग ढंग से। पहले वाले ने क्या कहा कि आपके परिवार के सदस्यों की मृत्यु आपसे पहले जल्दी हो जाएगी, आपको उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। फिर इसने क्या कहा, आपकी लंबी आयु होगी, रिश्तेदारों से लंबी आयु आपकी होगी। तो राजा को अच्छा लगा, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह से कैसे बोलना ये भी हमको समझना चाहिए। हाँ, तो भी थोड़े उदाहरण, पहले हनुमान का। तो वाल्मीकि रामायण में, किष्किंधा कांड में वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि राम और लक्ष्मण जब किष्किंधा क्षेत्र में आए तो सुग्रीव वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पर थे, उनके तीन चार साथियों उनके साथ में भी थे, हनुमान उनमें से एक थे। तो उन्होंने हनुमान को भेजा कि जाओ देखो ये कौन है, इन्होंने जटा वगैरह धारण किया है परंतु दिखने में तो ये लोग क्षत्रिय दिखते हैं, कंधों पे उनके सब निशाने दिखते हैं, किसके निशाने, धनुष के निशान वगैरह दिखते हैं। तो हनुमान को कहा कि तुम एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ, क्योंकि हनुमान की योग शक्तियाँ थी वेश बदलने की। तो ब्राह्मण के वेश बदल के वो गए। अब हनुमान ये बहुत बड़े विद्वान भी थे, पता है ना सबको, सूर्यदेव से स्वयं सारे वेदों का पठन किया था। जब भी सूर्यदेव चलते थे ना अपने चक्र में, तो हनुमान जी ऊपर चल के उनके रथ के साथ साथ चलते थे जब तक सूर्य अस्त होता था। तो ऐसे करके उन्होंने सारे वेदों को पढ़ लिया, तो सारे जितने भी वेद शास्त्र हैं अलग अलग क्षेत्रों के सब जान लिया। तो हनुमान जी न केवल बहुत शक्तिशाली योद्धा है, परम ब्रह्मचारी है, परम भक्त है, परंतु बड़े विद्वान भी है। तो जब हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए तो वैसे वाल्मीकि मुनि कहते हैं वेद वेदांग परांगत, हनुमान कैसे थे, वो वेदों को जानने वाले थे और वेदों के जितने भी उपवेद हैं उनको भी सब जानते थे। नव व्याकरण पंडित, व्याकरण के अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, जैसे पाणिनि का एक है वैसे अलग 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 है। तो नौ व्याकरण की पद्धतियों को अच्छी तरह से जानते थे। बुद्धिमतः वरिष्ठः, बुद्धिमान व्यक्तियों में से सबसे बुद्धिमान है। तो जब ये आए पास में तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में से बात करने लगे। और इतने अच्छे ढंग से बात कर रहे थे कि राम और लक्ष्मण बस देखते रह गए और सुनते रह गए, और आपस में एक दूसरे को देखा कि ये कितने अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। वैसे हनुमान जी सोच रहे थे, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, ये लोग तो उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो फिर राम ने हनुमान जी ने इनकी प्रशंसा भी बहुत की, राम लक्ष्मण की, क्योंकि उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते थे ना कि कौन हो, इधर क्यों आए हो, क्योंकि सुग्रीव को डर था कि ये वाली मेरा पीछे पड़ा है, शायद ये इसके कोई षड्यंत्र होगा वाली का। तो लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो फिर ऐसे बात करते करते राम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है ना, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें विस्तार में वाल्मीकि मुनि कहते हैं वाक्यज्ञम, कैसे वाक्यों को बोलना चाहिए, कैसे वाक्यों का शब्दों को कैसे जोड़ के वाक्य बनाना चाहिए, ये हनुमान जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हनुमान जी, उसका नाम पता नहीं था ना, आपस में हनुमान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति मधुरे ही वाक्य ही, और उनके वाक्य भी बहुत ही मधुर मधुर तरह मधुरता से बोल रहे हैं। और इससे हमको प्रतीत होता है, हमको पता चलता है कि कोई इस व्यक्ति की तरह तब तक नहीं बोल पाएगा जब तक कि वो सारे वेदों को नहीं जानता है, यजुर्वेद आदि सामवेद सब कुछ, और उसको व्याकरण आदि जितने भी शिक्षा व्याकरण ये सब है ना, वेदांग हैं, इन सबको जब तक ये अच्छी तरह से नहीं जानता कोई ऐसे बात नहीं करेगा। और जब वो बात करता है तो उसके चेहरे पे भी कितने एक अच्छा एक मुस्कान है, और उसके जो कपाल है उसके ऊपर उसके हम देख सकते हैं कि इसकी बातें सुनने में कितना अच्छा लगता है। एक शब्द भी यहाँ वहाँ उन्होंने गलत नहीं कहा है, और वाक्यों को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है, इससे लगता है कि ये बहुत बड़े पंडित हैं। और जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, किन शब्दों को चुन रहे हैं, वो बोलते हैं संस्कार क्रम संपन्ना। तो उनकी बातें एक के बाद एक कैसे, और कल्याणीम वाच हृदय हर्षिणीम, उनकी बातें सुनकर हृदय प्रसन्न हो रहा है लक्ष्मण। ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, कौन ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे वाक्यों को सुनकर प्रसन्न नहीं होगा। और यदि किसी राजा के पास ऐसे दूत नहीं है तो वो किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएगा। तो ऐसे राम ने भूरी भूरी प्रशंसा लक्ष्मण हनुमान जी की थी लक्ष्मण के सामने। तो वो समझ गए कि हनुमान की बातचीत करने का ढंग कैसे था। तो हनुमान जी की वाणी के बारे में कुछ यहाँ बहुत ही चीज़ें हैं, अगली बार आप में से जब रामायण पढ़ेंगे तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। वाक्य कुशल है, वाक्यों में वो कुशल थे। अगे भगवान श्री राम, तो श्री राम भी ऐसे ही थे। वाल्मीकि मुनि जब उनके गुणों का वर्णन करते हैं ना जगह जगह, फिर वो कहते हैं कि श्री राम है मृदुपूर्व तु भाषते या मृदु भाषिते। मृदु समझे ना आप, कोमल, कभी कठोर उनके वचन नहीं होते थे, हल्के से बात करते थे, कभी ऐसे आहो जोर से बोलना कुछ ऐसे नहीं। मधुरा भाषी मतलब बहुत मीठे ढंग से बोलते थे। न केवल मृदु उनकी भाषा थी, मधुर भी थी उनकी भाषा। पूर्व भाषी भी थे। पूर्व भाषी का मतलब क्या है?
पहले बात को इनिशिएट करते हैं।
हाँ, पहले बात करते हैं, मतलब ऐसे, अरे उसने मेरे को हरि बोल नहीं बोला मैं क्यों पहले जाके हरि बोल बोलूँ, उसको आने तो पहले मेरे पास। ये सब नहीं, पहले पहले जाके सबसे बात करते थे, छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, पूर्वभाषी, तो कैसे बातचीत करना, ये सब हम भगवान भगवान के भक्तों से भी सीख सकते हैं। प्रियं वदः मतलब उनकी जो वाणी है वो मधुर शब्दों से भरी हुई है और हृदय और कानों के लिए बहुत ही मनोरम है, बहुत ही रमणीय है। और उनके जो शत्रु थे वो भी उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी स्तुति करते थे कि ये तो मूर्तिमान मधुरता है। उच्च मानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। तो परुषम, परुषम मतलब किसी ने कोई कठोर वचन भी बोले तो उच्च मानोपि न उत्तरम, किसी ने उनसे कठोर वचन बोले, गुस्से में कुछ बात किया उनसे, श्री राम अपने आवाज को उठाते नहीं थे। उच्च मानो अपि, तो न उत्तरम, जब उत्तर देते थे तो ऊंचे स्वर में नहीं देते थे। यदि हमसे कोई गुस्से में बात करे, ऊंची आवाज में बात करे, तो हमसे सबसे मन में विचार क्या आएगा, हम भी उतने ही तेज गति से उससे बात करेंगे, उतने ही ऊंचे स्वर में बात करेंगे। वैसे भारत में भी जैसे लोग बात करते हैं ऐसे ही ऊंचे स्वर में बात करते हैं कि मानो कोई झगड़ा ही कर रहे हैं, है ना, इतने जोर जोर से बात करते हैं भारत में, है कि नहीं। ब्रज में भी ऐसे, ब्रजवासी एकदम ना, उनके बात करने का ढंग ही ऐसे। कई बार ब्रजवासी मेरे को बोलते थे, अरे तो हमारा दिल साफ है, हमारा केवल बात करने का ढंग ऐसे, आप जोर जोर से बात करते हैं हमसे। लेकिन हम देखते हैं कि सब जगह है, भारत में जितने भी प्रांत हैं, हमने सोचा था पहले दक्षिण में नहीं है, लेकिन दक्षिण में गया तो दक्षिण में भी ऐसे ही है, जोर से बात करना स्वाभाविक है, ऊंचे स्वर में बात करते, तो जब झगड़ा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। कितनी बार ट्रेन में तकलीफ होती है, नहीं? लोग जो रात रात तक बैठते हैं। एक बार मुझे याद है, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, बहुत सारे भक्त थे यात्रा में जा रहे थे, तो हमारे कंपार्टमेंट में हम लोग बहुत भक्त लोग थे, ब्रह्मचारी इस जगह थे, और फिर वो थोड़े गृहस्थ भक्त अपने अपने दंपति वगैरह सब अपने साथ में थे। तो उधर पास में कोई जोर जोर से रात रात तक वो लोग कुछ ताश खेल रहे थे, पत्ता खेल रहे थे, और कुछ जोर जोर से बात कर रहे थे, कोई सुने नहीं। ये रात में हमारे जो भक्तों में से एक माताजी थी, उनको इतना गुस्सा आया कि वो जोर से, उन्होंने ईश्वरी माताजी बोल के हैं, तो उन्होंने, उनकी आवाज़ भी काफ़ी बुलंद है, तो इतनी ज़ोर से बोले, आप इतनी ज़ोर से क्यों बात कर रहे हैं, आपको समझता नहीं कि सब लोग सो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे करके बोल दिया, वो चुप हो गए सारे लोग। पुरुषों की बात सुन के मानते नहीं थे, माता जी बोली ऐसे एकदम आवाज में, चुप हो गए, उसके बाद कोई आवाज नहीं आया। तो भारत में पता नहीं क्यों इतना संस्कृति सब बोलते हैं, लेकिन सब सोचते नहीं कि दूसरों को कष्ट होगा, इतने जोर जोर से हम बात करेंगे, हाँ, और झगड़ा जब करते हैं तो बस क्या कहना उसका। सड़कों में भी कितने जोर जोर से बात करते हैं, पर श्री राम को देखो, उच्च मानोपि पारुषम परुषम नोत्तरम न उत्तरम उच्च मानो प्रतिपद्यते। तो जब वो कभी भी ऊंचे स्वर में बात नहीं करते थे, कोई आके उनसे गुस्से में भी बात करे, कुछ भी हो, न च अनृत कथा, कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। इस तरह से श्री राम कैसे बात करते थे उसका भी जगह जगह वर्णन वाल्मीकि मुनि करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की बात कहाँ से हम करेंगे, हम भक्ति रसामृत सिंधु से करेंगे। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का उल्लेख किया हुआ है ना, तो 64 गुणों का उल्लेख किया है, उनमें से सातवां गुण, आठ, सात आठ नौ दस, ये चार गुण है जो भगवान के बोलने के से संबंधित है ना। तो आप कोई एक एक करके पढ़ो, देवेंद्र पहला वाला पढ़ो, फिर ऐसे एक एक करके, पहला वाला सातवा, अद्भुत भाषाविद, इस थोड़ा जोर से, ताकि अभी उच्च मानो पी, हाँ वो चलेगा। सबको सुनना चाहिए इसलिए।
सातवां गुण, अद्भुत भाषाविद। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष विभिन्न देशों की भाषाएं जानता है, विशेषतया देव भाषा संस्कृत तथा विश्व की अन्य भाषाएं जिनमें पशु भाषाएं सम्मिलित है, वह अद्भुत भाषाविद कहलाता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण पशुओं की भाषाएं भी बोल तथा समझ सकते थे। कृष्ण की लीलाओं के समय उपस्थित वृंदावन की एक वृद्धा स्त्री ने आश्चर्य व्यक्त किया था। ब्रजभूमि की तरुणियों का हृदय चुराने वाला वह कृष्ण इतना अद्भुत है कि वह गोपियों के साथ ब्रजभूमि की भाषा बोलता है, देवताओं से संस्कृत में बोलता है और पशुओं की भाषा में गायों तथा भैंसों से भी बातें करता है, कर सकता है। इसी प्रकार कश्मीर प्रांत की भाषा, सुंगो तथा अन्य पक्षियों की भाषा एवं अधिकांश लोक भाषाओं में कृष्ण कितने दक्ष है। उसने गोपियों से पूछा कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने में वह इतना दक्ष कैसे हुआ।
तो विविधाद्भुत भाषाविद, भाषाविद मतलब जो अनेक भाषाओं को बोल सकते हैं और अद्भुत तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा और आठवां गुण कौन सा है?
आठवां गुण सत्यवादी।
हाँ, सत्यवाक्य, मतलब वो सत्यवादी है।
जिस व्यक्ति का वचन कभी भंग नहीं होता हो, वह सत्यवादी कहलाता है। एक बार कृष्ण ने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि वे उनके पांचों पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से वापस लाएंगे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांचों पांडव घर आ गए थे, तो कुंती ने कृष्ण की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया था। वे बोली, भले ही सूर्य किसी दिन शीतल पड़ जाए या चंद्रमा किसी दिन उष्ण बन जाए, किंतु तो भी आपका वचन असत्य नहीं होगा। इस प्रकार जब भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध को ललकारने गए थे, उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कह दिया था कि दोनों पांडवों के साथ उपस्थित वे साक्षात कृष्ण हैं। कथा इस प्रकार है कि कृष्ण तथा पांडव, यहाँ पर भीम तथा अर्जुन दोनों क्षत्रिय थे। जरासंध भी क्षत्रिय था और वह ब्राह्मणों को खूब दान देता था, इसलिए जरासंध से युद्ध करने की योजना बनाकर कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर और भीम तथा अर्जुन के साथ चले गए। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था, अतएव उसने कृष्ण से कहा कि तुम क्या चाहते हो, और तब उन्होंने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने तब अपने को वही कृष्ण घोषित किया जो राजा का नित्य शत्रु था।
बहुत अच्छा। तो पहला उदाहरण कुंती महारानी का, कुंती महारानी ने क्या कहा? पांचों
मेरे पांचों पांडव पुत्रों का रक्षा वापस युद्ध से लेके आए, युद्ध भूमि से
हाँ,
लेके आए।
और फिर उन्होंने वचन का पालन
किया।
किया फिर
कुंती महारानी कहा कि शायद कभी एक दिन सूर्य शीतल पड़ जा सकता है या फिर चंद्रमा उष्ण हो सकता है, पर आप कभी असत्य नहीं।
हाँ देखो, सत्यवादी, सत्यवाक्य है। अच्छा, और फिर नौवा,
मधुरभाषी।
मधुरभाषी, श्री कृष्ण भी मधुरभाषी है।
जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है,
हाँ।
वह मधुरभाषी कहलाता है। कृष्ण ऐसे मधुरभाषी थे कि अपने शत्रु कालिया को यमुना नदी में परास्त करने के बाद उससे बोले, हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है, किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करूं। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था, अतएव नदी का पिछला भाग विषैला हो चुका था, इसलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वे मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उससे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने को कहा। कृष्ण ने उस समय कहा कि गौवे देवताओं द्वारा भी पूजित हैं और उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखलाया कि गायों की किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके चरण चिन्हों पर चलकर गायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गायें केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है, कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर विशेषतया गोपाष्टमी तथा गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की थी।
जय प्रियं वदः मधुरभाषी मतलब प्रियं वदः। राम के भी कृष्ण के भी दोनों कैसे हैं। और फिर अंतिम वावदूकः
वाक्यपटु। जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है वह वावदूक अथवा वाक्यपटु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण द्वारा विनयशीलता से बोलने का सुंदर उदाहरण मिलता है। जब कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से वर्षा के देवता इंद्र के सम्मान में अत्यंत शिष्टतापूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को वन करने को कहा तो गांव की एक ग्वालिन उन पर मोहित हो गई। बाद में वह कृष्ण के बोलने के विषय में अपनी सखियों से इस तरह बोली, कृष्ण अपने पिता से इतने शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हों। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट न हो जाए। कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वे अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। वे अधिक नहीं बोलते, उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावने लगते हैं।
कृष्ण कम शब्द बोलते थे लेकिन हर शब्द बहुत अर्थपूर्ण, बहुत ज्यादा बोलने में, और दोहराते नहीं थे ज्यादा। तो एक बार बात कही कह दी, तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम जब बात करेंगे तो उसी चीज को बार 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 नहीं दोहराना रहना चाहिए। अनेकों बार ऐसे होता है जब हमसे कोई बात करने आते हैं उसी बात को दोहराते रहते हैं बार बार। तो बात कैसे तो एकदम जो है अर्थपूर्ण बातें बताते जाना। ऐसे कविराज गोस्वामी भी परिभाषा देते हैं चैतन्य चरितामृत में वाक्पटुता की, तो कृष्ण आदर्श वाक्पटु है। कम शब्दों में बात करना और हर एक शब्द अर्थपूर्ण हो और सारांश में सब कुछ जो भी सार है उसका उसमें निकलना चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है क्या कि समाप्त हो गए?
चार और
नहीं, ये तो हो गया,
ये श्लोक पुनः आया
इसकी जैसा ही और एक।
पढ़ो
अपना। महाभारत 5:34-5 धृतराष्ट्र द्वारा पूछे जाने पर उस व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता है जिसकी निंदा बेहाल है, जिसकी नींद बेहाल है और जो चिंताओं से जल रहा है। विदुर जी बोले, राजन मनुष्य को चाहिए कि जिस व्यक्ति की वजह जिस व्यक्ति वह पराजय नहीं चाहता हो उसे बिना पूछे भी सत्य वचन बोलने चाहिए, फिर चाहे वह शब्द उसे अच्छे लगे या बुरे।
ठीक है, इसके बाद वाला
फिर से वही संस्कृत का
ठीक है। जिस व्यक्ति की नींद हराम हो गई है, चिंताओं से उथल पुथल कर रहा है, उसे चाहिए कि जो भी हो सत्य बोलो। और एक बात धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वैसे मनुष्यों को 100 साल की आयु दी गई है, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनको 100 साल की आयु तक पहुंचते हैं, इसका कारण क्या है? तो विदुर बताते हैं कि इसके पीछे 6 कारण हैं। एक साथ भले एक दिन में से हो तो ये आयु को का गठन करती है। पहला है अत्यंत घमंड, ये आयु को काटती है। दूसरा है ज्यादा बात करना, जो बड़बड़िया होते हैं ना तो वो अपने आयु को ही काटते रहते हैं। तीसरा है अधिक खाना। चौथा है गुस्सा ज्यादा करना। तीसरा है भोग ज्यादा करना। और अंतिम छठा है कि वो अपचन आदि के कारण कुछ पेट की बीमारी की बात करते हैं, तो ऐसे पेट का गड़बड़ जब हो जाता है, पचन वगैरह आदि की समस्या, तो उससे भी ये हो जाता है, आयु घटती है। तो इसमें से 6 कारणों में से एक है अधिक बात करना। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो आवश्यकता से अधिक बात नहीं करे, है ना? आवश्यकता पड़ने पर चुप नहीं बैठे, आवश्यकता है जब उस समय बोलना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तो फिर बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के लिए यदि आवश्यकता हो बात करने के लिए तो दिन भर बात करो, आयु कम भी हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ही लंबी आयु जीने से क्या मतलब? कितने पेड़ हैं जो लंबे लंबे आयु जीते हैं, कोई फायदा है क्या? ऐसे बड़े बड़े संत हुए, उनकी जीवन की अवधि बहुत कम थी। चैतन्य महाप्रभु कितनी आयु थी उनकी? 48 वर्ष। शंकराचार्य
32 वर्ष,
है ना? तो लंबी आयु ही एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यदि कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक पड़े बात करना, हमें करना चाहिए। उस समय परवाह नहीं करनी चाहिए कि अरे हमने पढ़ा कि अभी बात तो अभी प्रवचन नहीं देंगे, हम कथा नहीं करेंगे क्योंकि जीवन की अवधि कम हो जाएगी, नहीं बल्कि बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अमृतत्व की ओर बढ़ जाएंगे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है ना, आयुर्हरति वै पुंसां उद्यनस्तं च यनसौ तस्यर्थ यत्क्षणो नीत तम श्लोक वार्तया, कि जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो साधारण व्यक्तियों के जीवन की अवधि घटती रहती है, सिवाय उनके जो कि अपना समय उत्तम श्लोक के वर्णन में बिताते हैं, श्रवण कीर्तन में। तो जो लोग कृष्ण कथा में अपना समय बिताते हैं, भले उनकी जीवन की अवधि कम हो या अधिक हो, परंतु मृत्यु के बाद वो कृष्ण के पास जाएंगे, उनको अमृतत्व की अवस्था की प्राप्ति होगी। और एक बात जो विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को, कि ऐसे मूर्ख होते हैं जो ज्ञानी व्यक्तियों की को कष्ट पहुंचाने के लिए झूठी निंदा करते हैं और ऐसे गलत गलत बातें उनसे उनके बारे में कहते हैं। इसका उद्देश्य, इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि उस बुद्धिमान व्यक्ति के जितने भी पाप होंगे भी बचे, वो निंदक जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी निंदा हो रही है वो मुक्त हो जाता है और आराम से निकल जाता है। निंदा करने वाले को दूसरे व्यक्ति का सब कुछ लेना पड़ता है। तो यदि आज मैंने समस्त वैष्णव प्रभु की खूब निंदा की, तो समस्त वैष्णव प्रभु के तो पाप नष्ट हो गए, वो तो अलग बात है, वो क्योंकि भक्त है। यदि वो भक्त नहीं होते तो उसके सारा पाप मुझे ले लेना पड़ता, खास करके यदि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। तो विदुर जी ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं, हे राजन, अभी हमारे वाणी को नियंत्रित करना ये सबसे मुश्किल है और ये आसान नहीं है कि किसी के साथ हम एक लंबा संवाद करें और उसमें हर एक शब्द जो है वो अर्थपूर्ण हो और श्रवण श्रवण करने वालों के लिए वो बहुत ही रमणीय हो। लंबा संवाद जिसमें अर्थपूर्ण बातें हम कहें, सही शब्दों को चुने और सुनने वाले के लिए वो बहुत रमणीय हो, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे संवाद कर सकते हैं। जब कोई अच्छी तरह से बात करते हैं तो उसे कई लाभ होते हैं, और जो कोई सही तरह से बात नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं। जब किसी वन में हम तीरों के द्वारा या तरह तरह के अस्त्रों के द्वारा पेड़ पौधे आदि काट देते हैं तो उनमें से ये पुनः पेड़ पौधे उग जाएंगे, परंतु जब किसी का हृदय घायल हो जाता है ऐसे अपशब्दों से तो वो कभी ठीक पुनः नहीं हो पाता है। यदि कोई हम अस्त्र छोड़ देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो तीर हो इत्यादि, तो तीर को शरीर से निकाला जा सकता है, परंतु ये शब्द रूपी जो तीर हैं जब हम फेंकते हैं किसी के ऊपर, तो उन तीरों को निकालना संभव नहीं है। और इसलिए जिस व्यक्ति को ऐसे तीर लगता है और वो घायल हो जाता है, वो दिन रात दुखी रहता है। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी इस तरह की तीर छोड़ने नहीं चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए हम ऐसे कोई शब्द कभी न कहें। ठीक है, तो इसलिए हमारे भक्त समाज में भी ये सब चीजें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग आपस में रहते हैं, आपस में सेवा करते हैं, तो आपस में हमारा संबंध जो है ये बहुत अच्छी तरह अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कैसे बात करते हैं दूसरों से बहुत ज़रूरी है, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अन्य भक्तों की प्रगति के लिए। और हम यदि आपस में भक्तों के बीच में ठीक से बात नहीं कर रहे हैं तो जो नए भक्त हैं या जो अब भक्त नहीं हैं वो सब देखेंगे तो फिर उनको क्या लगेगा कि अरे ये कैसे हो रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे भक्त लोग कभी गाड़ी में जाते हैं ना, मंदिर की गाड़ी में, कभी तो हम अलग अलग मंदिरों की बात करते हैं, तो आपस में बात करते रहते हैं और बातों बातें में ये भक्त की निंदा करते, उस भक्त की निंदा करते, वो ड्राइवर बेचारा सुन रहा होता है सब कुछ। ड्राइवर एक कर्मचारी होता है, उसको नहीं पता होता है कि सब, वो भक्त नहीं होता है, कभी कभी वो ये सब सुन लेता है कि आपस में ऐसे बात करते हैं, तो आगे चल के वो भक्त कैसे बनेगा फिर। उसी तरह से भक्त समाज में भी, हमारे मंदिर में हो, गोकुल धाम में हो, बहुत से लोग आते हैं, नए नए लोग भी आते हैं, तरुण लोग भी आते हैं, तो उनके सामने हम यदि ठीक से बात नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यदि वाद करेंगे, मतभेद ठीक है, उससे चर्चा हो सकती है, लेकिन मराठी में बोला भांडण, क्या करूँ, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि सुनने वाले को लगे कि ये क्या हो रहा है। मतभेदों का भी समाधान जो है वो एक वैष्णव तरीके से, ढंग से ही होना चाहिए। तो ऐसे बिना समस्या तो सब जगह होती है, तो सब कहाँ जाके क्या बात करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसके सामने करना नहीं करना, ये भी सब हमको थोड़ा समझ लेना चाहिए। है तो इसलिए ऐसे एक संस्कृति हमको बना लेनी चाहिए, इसलिए वाणी की संस्कृति इतना महत्वपूर्ण है। अभी आपकी कोई चर्चा के विषय है, कोई प्रश्न आदि है?
सुबह हम चर्चा कर रहे थे, अंग्रेजी में ये शब्द नहीं है कि आप ऐसे रिस्पेक्टफुल जो संबोधन होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं आप या फिर त्वाम, तो उस तरह से अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी में पहले मैंने सुना था कि थे दाव दाए, ऐसे सब थे, वो धीरे धीरे से शायद अभी आज कोई उपयोग नहीं कर रहा, बाइबल में तो हैं उपयोग होते थे, लेकिन धीरे धीरे से वो लुप्त हो गए।
लेकिन वो भी नहीं था ना उस समय, दाव दाव सबको बोलते थे, ऐसे ही एक था वो, लेकिन ऐसे भेद नहीं था, ऐसे ज़्यादा दाव भी यू की तरह बोलते थे, दाव आर्ट, तो हुआ भी होगा, तो आजकल तो नहीं है ऐसे,
तो वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है,
अंग्रेजी में भी यू गाइस कहते हैं। देखिए एक बार मैं गया था तो वहाँ के एक भक्त था, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग सब बैठे थे और अनेक भक्त भी थे। ओके यू गाइस में उठ गया, यू गाइस मतलब गाइस उनके लिए ऐसे, उनका बात ऐसे, उनको कुछ नहीं लगा कि ये कुछ यू गाइस करके बोल रहे, और सब लोग सुन रहे, किसी को कोई समस्या नहीं थी उसमें, चल रहा, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही बात होती है, वो राष्ट्रपति को भी मिलेगी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से, वो भी उनके बोलेंगे यू गाइस, उनकी संस्कृति ऐसी है ना।
यहाँ पर भी हम देखते कोंकणी भाषा में, कम से कम गोवा में तो, कि सबको पिताजी हो या फिर गांव का मुखिया हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो, उनको सब लोग तू ऐसे बोलते हैं, रे बोलते हैं, तो ये मैंने वहीं पे देखा था, लेकिन यहाँ इस तरफ की भाषा में ऐसा नहीं है,
तो ये अच्छा नहीं है, तुका तुका रहे तुका
पत्नी पति को भी ऐसे
तू करके बोलती है,
महाराज एक्चुअली है वर्ड्स है बस, तुमका ऐसा भी बोलते हैं थोड़े, बट
आजकल वो
बहुत, हाँ बहुत कम है, मतलब बोल सकते हैं बट बोलते
नहीं, नहीं बोलते
महाराज ये भगवद गीता का 14वां अध्याय का दसवां श्लोक है कभी रजस कभी तमस, तो ये कभी प्रोमिनेंट होगा कभी नीचे आएगा, तो रजस सत्वम तमस सेव तमस सत्वम रजस तथा ऐसा ऊपर नीचे होते रहेगा। तो आपने उद्धव गीत से रजोगुण का सत्वगुण का तमोगुण का जो गुण बोला, और हम जब कार्य करते हैं इधर क्योंकि पूरा से पूरा हम लोग क्योंकि सेटिंग जो है हम लोग को ऐसा कार्य होता है कि हम रजस कभी कभी तमस में भी जाना पड़ता है, तो कार्य हमारा वो रहेगा, मगर वो सडनली वो समय में कोई बोला वो एनवायरनमेंट वो प्लेस और वो मेरा वर्क और मेरा मूड भी उसमें ही रहता है, तो वर्ड फिर वैसे ही आता है।
तो हम हमारे वातावरण से प्रभावित होते हैं, और कोई सात्विक है तो ऐसा नहीं कि हो जरूरी है कि वो हर समय सात्विक ही रहेगा, कभी कभी रजोगुण का प्रभाव आ जाता है, कभी तमोगुण का हो सकता है। प्रधानता कौन से गुण की है ये हमको देखना चाहिए। सेवा के लिए हम कोई भी गुण का प्रयोग क्यों ना करें, जैसे जो बहुत सेवा होती है हमको करना पड़ता है, अभी खेती में जाओ करो कुछ परिश्रम करो, हाँ बांध काम करना है कुछ पट्टा थोड़ो करो करो, तो रजोगुण का काम है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये सेवा है और आवश्यक है करने के लिए। तो उस समय के लिए जब कर रहे हैं तो पूरे हृदय लगा के करना चाहिए, फिर बाद में आके फिर से सत्वगुण में। हाँ फिर हम सोने जाते हैं तमोगुण का कार्य, सो जाओ जितना जरूरी है उतना सो जाओ, ज़्यादा करने से फिर ज़्यादा तमोगुण हो जाए, फिर से सत्वगुण में आ जाओ ऐसा। तो इसी तरह से हमारी वाणी को भी हमको देखना चाहिए, अभी हम थोड़े वो राजसिक वातावरण में है, वो पट पट वो बहुत काम काम गड़बड़ में चल रहा है, फिर भी हमको याद रखना चाहिए कि हम लोग वैष्णव है, तो हमको थोड़ा अच्छे ढंग से बात करना चाहिए।
मेरा और हर्षल पो का चर्चा हो रहा था,
थोड़ा जोर से सब लोग।
मेरा और हर्षल पो का चर्चा हो रहा था कि कोई भी परिस्थिति में जब हम आते हैं तो कैसे उत्तर देना, वो थोड़ा विचार करके देना होता है, तो वो फिल्टर फिट करना होता है, मतलब हाँ ये व्यक्ति को ऐसा उत्तर देना है, ये व्यक्ति को ऐसा उत्तर देना है, किसने ऐसा बोला, तो क्या वाणी की संस्कृति जो हमने सुना क्या ये एक फिल्टर है या हमारी अंदरूनी भाव को सुधार के नेचुरली प्रस्तुत करना है?
दोनों। हाँ दोनों चीज़ें, अपने भाव को एकदम से सुधारा नहीं जा सकता ना, इतने जन्मों से चलते आ रहा है तो एकदम से तो नहीं होगा, इसलिए उसको तपस्या बोलते हैं ना, वानमयम तप उच्यते। तो तपस्या क्या है, किसी चीज़ को चाहते हुए भी नहीं करते हैं, किसी चीज़ को नहीं चाहते हुए भी करते हैं, जबकि हमारे भलाई के लिए जब हमको शास्त्रों में बताया गया है ऐसे। हाँ तो फिल्टर भी है, हम सोचते हैं कि कैसे बात करना, ये तो सोचना पड़ता है, जैसे हम हर एक कार्य करने के पहले सोचते हैं ना, उसी तरह से बोलने के पहले भी सोचना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे अभ्यास करते हैं तो फिर स्वाभाविक हो जाता है, अपना स्वभाव का ही अंग बन जाता है।
तो फिर इसमें सरलता नहीं रहेगी?
नहीं, सरलता होती है, कपटता नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी बच्चे से बात कर रहे हो, फिर एकदम किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, तो फिल्टर लगाओगे कि नहीं, उससे बोलोगे कि ये कपटता है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। ऐसे कोई बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति आए, उसके पहले एक बच्चे के साथ कुछ बात कर रहे थे, तो दोनों में बात करने का और व्यवहार करने का ढंग थोड़ा अलग होगा कि नहीं होगा?
ढंग अलग होगा।
हाँ वाणी भी अलग होगी कि नहीं, तो उससे वो भी सरलता के विरोध में नहीं है, क्योंकि जैसे सामने वाले व्यक्ति हैं, जैसे परिस्थिति है, वैसे हमको बोलना चाहिए, वैसे हमको कार्य करना चाहिए। ये कोई सरलता के विरोध में नहीं, विरुद्ध नहीं है।
नहीं मेरा और एक व्यक्ति का कुछ हुआ है, तो अभी वो मेरे मन में है क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है, तो अगली बार मैं बहुत सोच समझ के विचारधारा व्यक्त करूँगा, लेकिन अंदर उनके प्रति जो भावना है वो बदल नहीं रहे, जो है वही है, लेकिन
कम से कम बाहर से तो, कम से कम बाहर से तो ठीक करो, अंदर का भी ठीक हो जाएगा। बाहर से भी नहीं करोगे तो अंदर का कभी भी ठीक नहीं होगा। बाहर का ठीक से करेंगे और जब करेंगे सब ठीक हो जाएगा। स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, पांचवा करेंगे तो पहले चार आ जाएंगे, धीरे धीरे से प्रयास भी करना चाहिए।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंग्लिश में जो शब्द है हिंदी में क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरलता, दोनों में अंतर है?
वही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या, जैसे है वैसे बात को बोलना, लेकिन ये वो सही है, लेकिन इसको बहाना नहीं बोलना चाहिए, बनाना चाहिए किसी को जो मन में आए वो बोलने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा ना कि सरलता के नाम पर जो मन में आया वो बोल दिया, नहीं ऐसे करते हैं क्या, जो मन में आया हम खाते हैं क्या, नहीं। उसी तरह से जो मन में आया वो बोलते नहीं, हर बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी प्रचार के लिए भी जाते हो या बाहर जब भी जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो परेशान करता है, फिर भी हंसमुख से रहना पड़ता है ना। मन में कुछ इच्छा और होती है, है कि नहीं?
जैसे अंजन प्रभु ने भी जो प्रश्न पूछा उसका ही थोड़ा आगे का, सुबह के सत्र में जैसे हमने बोला कि हम सबको एक्चुअली मान सम्मान देना चाहिए, और जैसे आपने एक उदाहरण दिया जो माता पिता भी अपने बच्चे को आप ऐसा करके संबोधित करते हैं, पर एक एक बार ऐसा ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़्यादा सम्मान दिया तो बहुत औपचारिक हो जाएगा ना रिलेशंस, मतलब फॉर्मल ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा मधुरता आने के लिए अनौपचारिक बात भी करना जरूरी।
ठीक ठीक है, चलेगा, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए कैसे करना। सही है, इसलिए वृंदावन और वैकुंठ में ये अंतर है। वैकुंठ में थोड़ी औपचारिकता है भगवान के संबंध में, वृंदावन में ऐसे कुछ नहीं। तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम्हें हमेशा कौन से बड़े आदमी भाई, तुमने क्या असुर असुर मार दिए, हम थोड़ी कम है क्या। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक घर में सबको आप बच्चों को बोलना चाहिए, लेकिन एक कई घरों में ऐसे होते हैं करते हैं। तो हर बार हर चीज का फीडबैक देने का जरूरत नहीं है, कभी कभी क्या है ना, हमको कोई कष्ट भी होता है ना, तो जरूरी नहीं कि हर कष्ट को हमको दूसरे को बोलना चाहिए। सही है ना, दुनिया में इतने सारे कष्ट आते जाते हैं, कभी कभी हमको कुछ चिढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, हर चीज को बोलने की जरूरत नहीं है। हर चीज बोलते जाएंगे तो कोई हमारे साथ रहेगा ही नहीं, कुछ है कि नहीं, और नकारात्मक भाव हमारा भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको केवल जब आवश्यक है बिल्कुल उस समय हम जो लाभदायक है सबके लिए उसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं, या किसी से कोई छोटी भी चीज़ हो भले ढंग से हम बोलें कि ऐसे ऐसे करने से ये अच्छा हो सकता है। ठीक है,
जैसे शास्त्र में बताया गया कि इंटेलिजेंस को प्योरीफाई करने का ये मार्ग है, माइंड को प्योरीफाई करने का ये मार्ग है, सेंसेस को प्योरीफाई करने का ये मार्ग है, तो अगर एक बार अहंकार का शुद्धिकरण हो गया तो कोई भी बोलेगा भी तो उसको लर्निंग स्पिरिट में ले सकते हैं। तो प्रश्न है कि अहंकार को शुद्धिकरण करने का सबसे स्मूथ फास्ट वे क्या है?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे
बस जब ज्यादा आ जाता है ना अहंकार गुस्सा ये वो, बैठो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हमारा जब दो भक्तों के बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है, उनके जो मत है भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से मतलब सुलझाना चाहिए? सत्व गुण कैसे
वैष्णवता से बुद्धिमानी से। यदि हम सुनते आए हैं पढ़ते आए हैं कि वैष्णव का व्यवहार कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको बर्ताव करना चाहिए। अनेकों बार छोटी 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 चीजों पे बातें बढ़ जाती हैं। और सारी शक्ति क्षीण हो जाती है इसी चीज में। इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, सारी दुनिया इस पर चलती है। बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं देशों के बीच में, वो राजा ने ऐसे कहा, इसने ऐसे उत्तर दिया, वो ऐसे कैसे बोला उन्होंने युद्ध। चलो इतिहास पढ़ोगे तो यही तो होता है ना, इसने उसका अपमान किया, इसने ऐसे बोला, बिना वजह कोई कारण नहीं। बड़े बड़े युद्ध भी ऐसे हो जाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, जैसे हमने कहा कि वाणी का नियंत्रण नहीं करेंगे तो वैर बढ़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है। इसलिए जो चुप बैठता है, मतलब जहां आवश्यक है उतना ही बोलता है, वो सुखी रहता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बोलने से रुकना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा कृत्रिम रूप से भी अपने को दबा के नहीं रखना चाहिए। या बोलने की इच्छा है तो बात करो अन्य भक्तों से, अवश्य करना चाहिए हमें। आज हमने वाणी की संस्कृति में सुना कि हमको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तो फिर वो कृत्रिम रूप से हम दबा के नहीं रखें। ठीक है, बात करो, लेकिन ये जो चीजें हमने आज सुनी है ध्यान में रखना चाहिए।
महाराज आश्रम में बहुत बार हमारे गोकुल में तो विविध दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, और मेरा डिपार्टमेंट के बारे में दूसरों को ये क्या तो बोलना है, मेरा उनको बोलना है, और बाद में उनको साथ हम चर्चा करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो, और वो मेरे से मतभेद मान भेद हो सकता है। उस वक्त ये अच्छे रहेगा कि हम शांत रहे और उनका डिपार्टमेंट वो अच्छा रहे, हमारे डिपार्टमेंट हम अच्छा रहे, ये अच्छा
निर्भर करता है ना कि कैसे। इसलिए हमको सही ढंग से अपने व्यवस्थापन का देखना को देखना चाहिए। व्यवस्थापन ठीक से हुआ तो फिर अनेक समस्याएं कम हो जाती है। मतभेद और गलत फहमियाँ इसके कारण भी होती हैं कि हम ठीक से व्यवस्थापन नहीं करते कभी कभी। कैसे चीज़ों को करना कैसे नहीं करना ये नहीं जानने की वजह से लोग ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे मतभेद हो जाते हैं। इसलिए ये सब भी सीख लेना चाहिए हमको, अच्छा व्यवस्थापन कैसे करना।
एक टॉपिक आया कि जैसे आप बोले कि जब हम दूसरों को निंदा करते हैं तो उनका पाप नष्ट हो जाता है, तो वो सामने में उनका करने से और कोई पीछे में किया तो
फिर भी वही बात है ना, देखो जिसकी निंदा की उसके पीछा किया तो उस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरी निंदा हो रही है, वो वैसे भी सुखी है ठीक है। जो व्यक्ति निंदा करता है वो जल रहा है अंदर से, उसको बोलता रहेगा, तो उसको निंदा करते समय भी उसके मन में यही मन शांत नहीं रहता है ना, तो उसकी अशांति तो होती है, साथ साथ दूसरे का भी ले लेता है। तमिलनाडु में एक है तिरुवल्लुवर, अमा तिरुवल्लुवर, तमिल भाषा में उन्होंने बोला है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है तो दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए, कि वो ईर्ष्या ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिससे वो ईर्ष्या करता है वो अपने जगह में है, लेकिन ये ईर्ष्या के कारण ये जल जल के ये खत्म हो जाता है ना। इसलिए निंदा वैष्णव गुणों में से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो निंदा करने से मुक्त है ऐसे बहुत कम, हाँ निंदा करना एक बात है और किसी का भूल ढूंढ के उसको फिर सही करना कृष्ण की सेवा के लिए, इन दोनों में अंतर है। लेकिन बिना वजह किसी की निंदा करना जबकि वो हित के लिए नहीं है, तो वो ठीक नहीं।
जब हम प्रचार करने जाते हैं तो तब भी हमको उनकी गलती बताना पड़ता है लोगों की, ये गलत है, पर्सनल लेवल पर
किस ढंग से हम करेंगे वो महत्वपूर्ण है। और सामने वाले देश काल पात्र ये याद रखना, जो हमने बोला था ना बोलने के पहले, कहाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्या परिस्थिति है, और ये बोलने की बात हम बोलने के लिए सही व्यक्ति हम हैं या कोई और होना चाहिए, ये सब हमको सोचना चाहिए बोलने के पहले। ये तो केवल ऐसे बोल के फिर आना, उसमें क्या फायदा है।
आप ये प्रकृति संस्कृति और विकृति के बारे में, अभी हम हमारा जो प्रकृति है और हमारा विकृति, ये दोनों आश्रम में हम थोड़े ही दिन में हम लोग हैं, मगर इसका पहले जो भी हमारा संस्कृति नहीं है, तो प्रकृति और विकृति इतना ज़्यादा है। और जब तुरंत हम आएंगे, जब ऐसा जब हमको कुछ सुनेंगे तो ये हम ये, क्योंकि ये संस्कृति हमको लेना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि व्हाट टू से, ओके अभी पता चला, व्हेन टू से, वेयर टू से, उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, तो उसका परिपक्व उसका उतना चाहिए ताकि उसको सब कम से कम सत्वगुण में रह के ये सोच विचार करने के लिए। तो ये क्योंकि संस्कृति से ज़्यादा हमारा विकृति और प्रकृति इतना बड़ा है, और तुरंत जब हमको ये मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये दूसरे के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, आपका संस्कृति नहीं है आप ऐसा बात कर रहे हैं, प्रवचन सुना नहीं क्या, तो ये अलग लोगों के ऊपर ही ये चले जाते हैं, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली ये समय पे हम उतारेंगे।
नहीं बस हमारे जो भक्ति की क्रियाएं हैं, साधना है, उनको ही करते रहना बस, ये हमारे संस्कार है। संस्कृति हमारी क्या है, जप करो, कीर्तन करो, भागवत पढ़ो, सेवा करो भगवान की, है ना, ये आदि रस पे नहीं आए क्या है। ठीक है हाँ।
अभी हम खेती में वगैरह सेवा करते हैं, तो उस समय पे अगर कोई कोई नए बताते तो वो बोलते हैं कि अरे यहाँ पर तो शास्त्र का चर्चा ही नहीं होता है, बस खेती करते हैं, तो फिर मतलब कि कर रहे हैं, करते वक्त ऐसा बोलते हैं तो गुस्सा आता है, तो बोलते हैं पहले करो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो फिर वो उनको लगता है कि अरे ये क्या गए, हाँ गए गुजरे ऐसा, तो ये कुछ ध्यान नहीं रहता सर। तो उस समय पे कैसा?
हर चीज़ के लिए अपना समय होता है। जब सो रहे होते हैं उससे हम बोलेंगे अरे शास्त्रों की चर्चा नहीं करते, अभी सोने का समय है, अभी शास्त्रों की चर्चा उठ के करेंगे सुबह। तो उसी तरह से शास्त्रों की चर्चा के लिए समय, जैसे आज बैठ के क्लास कर रहे हैं, सुबह को भागवत क्लास होता है, ये सब शास्त्रों की चर्चा के लिए अवसर है। प्रसाद के लिए समय होता है, नींद के लिए समय होता है, स्नान आदि के लिए समय होता है, अध्ययन के लिए समय होता है, उसी तरह से शास्त्र चर्चा के लिए भी समय होता है। तो हर एक चीज़ को अपने अपने जगह में देखना चाहिए। जब सेवा कर रहे होते हैं उस समय सेवा, यहाँ पे गोकुलधाम जैसे प्रकल्प में तो ये सब ही चलेगा ना, ज़्यादा यही सब तो सेवाएं ज़्यादा है यहाँ पर। शहर के मंदिर की तरह तो है नहीं यहाँ पर। तो अधिक सेवा ऐसे रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आज बहुत थका दिया हमने सबको, दिन भर क्लास लेके। उद्धव हरि प्रभु हमेशा प्रसन्न ही है ना,
उनको श्री राधा कुंज हरि प्रभु उनको हसमुख करके नाम दे।
ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगली बार जब मैं आऊँगा हम क्लास में क्या करेंगे कि आज जो भी हमने चर्चा किया ना उसके मुख्य बिंदु लेंगे, आप भी उसको स्मरण करके आइए कि कौन से मुख्य बिंदु हैं, वो सब हम दोहराएंगे थोड़ा, हाँ ताकि वो सब बातें हमको याद रहें। और ये श्लोक भी कंठस्थ कीजिए, अनुद्वेग करम वाक्यम वो वाला, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोकुल धाम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल, हरे कृष्णा।